श्री बौद्धमान महानी समय सार अनुशीलन प्रश्न 208 सबसे नीचे की दो पंक्तियां हैं। इन गाथाओं के भाव को का स्पष्टीकरण जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में इस प्रकार किया है। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं। अवरत दृष्टि ज्ञानी के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उनके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादि कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है। यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञानत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है। ज्ञानी का स्वामित्व नहीं है, कर्ता नहीं। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं। सारा व्याख्यान विस्तार से हो चुका है। हम में ऐसी सामर्थ्य है कि जो परिणमन हम में हो रहा है, उस परिणमन में भी किसी परिणमन के हम स्वामी बने और किसी के स्वामी नहीं बने। ऐसी क्षमता हरेक में है। ये कह रहे ज्ञान ज्ञानी लिखा ना, ज्ञानी नहीं परिणमता है रागादि रूप, ज्ञान रूप ही परिणमता है। तो ज्ञानी में हम तो ज्ञानी है नहीं, तो वो कहते ऐसी क्षमता है। जैसे कि शरीर में बीमारी आई तो बीमारी रूप भी शरीर ही परिणमन है, और स्वास्थ्य आया तो स्वास्थ्य रूप भी शरीर ही परिणमन है। फिर भी स्वास्थ्य में हम अपना कर्तृत्व मानते हैं, मैंने व्यायाम किया, मैंने सावधानी रखी, मैंने समय पर दवाई ली, मैंने बद परहेजी नहीं की। और जब बीमार हो जाते हैं तो उनमें हम अपना स्वामित्व नहीं रखते हैं, बीमारी के हम स्वामी नहीं बनते, उसे हम अपना मान शरीर को अपना मानते हैं, शरीर में आए बुखार को अपना नहीं मानते, शरीर में उत्पन्न हुए फोड़े को अपना नहीं मानते, शरीर में उत्पन्न हुए खुजली को हम अपना नहीं मानते। और तो और जैसे जैसे किसी अपेक्षा से अपना ही है ना, लेकिन फिर भी हमारा इनमें एकत्व नहीं है। जिस चीज में एकत्व होता है उसके नाश करने का भाव कभी किसी को नहीं आ सकता। अभाव करने नाश शब्द जरा अच्छा नहीं लगता है, भाव नाश करने मतलब अभाव करने का भाव नहीं आता। और जो चीज में हमारा अपनापन होता है उसको हम रखने का भाव आता है। तो इसलिए बीमारी को हम निकालना चाहते हैं, फोड़े को हम निकालना चाहते हैं ना। तो जिसको निकालना चाहें उनमें अपनापन हो तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो चीज अपन अपनी है और अपन है तो उसके नाश करने का तो मतलब है अपना ही नाश करना हो गया ना। क्यों तो कोई भी आदमी अपना ही नाश क्यों करना चाहेगा। इसलिए उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चीज यद्यपि अपनी पर्याय में अभी दिखाई देती है, शरीर में है, लेकिन निकल जाने लायक है। तो ये निकल जाएगी और शरीर पूरा स्वस्थ हो रहेगा, माने शरीर को उससे कोई हानि नहीं होगी। क्या ख्याल में आना, ये इसको पक्का भरोसा रहता है, तभी उसको हटाने का ये उपाय करता है। यहां तक कि चीरा लगाता है तकलीफ भोग करके भी मवाद को निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसा भेद विज्ञान करने की आदत तो इसमें है ना, दोनों की एक सी पोजीशन है। जैसा अपने शरीर में खून पैदा हुआ है ना, اپنے کھانے پینے سے، ویسے ہی وہ پیپ بھی اسی میں سے بنی ہے. پیپ کیا ہے؟ خون پک گیا پیپ ہو گیا، وکت ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا، ایسے سمجھو. پہلے جب ہوتا ہے پہلی اسٹیج میں اسے ہم پکنا بولتے ہیں اور اگلی اسٹیج میں سڑنا بولتے ہیں. تو ایسا وہ خون جو ہے وہ پک گیا، سڑ گیا، ہم بولتے بھی نہیں پک گیا، بولتے ہیں تھوڑا پک گیا. تو ان دونوں کے بیچ میں، دونوں کی اتپتی ایک ہی چیز سے، ایک ہی جگہ، ایک ہی بدھی، ایک ہی پرکریا سے ہوئی ہے. پھر بھی ایسی بھید وگیان کرنے کی طاقت ہماری ہے نا، کہ یہ رکھنے لائق ہے اور یہ ہٹا دینے لائق ہے. جو رکھنے لائق ہے وہ میں ہوں، میرا ہے، اور جو ہٹا دینے لائق ہے وہ میں نہیں ہوں، میرا ہے نا. سوستھ ہم ہیں، ہوئے ہوں اور بیمار ہو گئے ہیں، ایسا بولتا نا. بخار آ گیا ہے، تم نے بخار کیوں کیا؟ بخار کو نہیں کرتے پھر ہم نے کیا کرنا؟ تو آتا نا سر، وہ بدجوری آ گیا، زبردستی ہمارے نہیں چاہتے ہوئے بھی آ گیا. تو ایسے ہی انہوں نے یہاں پر بتایا کہ ہمیں آتما میں جو وکار ہے ان میں ہوئے تو بھی یہ میں نہیں ہوں، میرے نہیں ہیں، میں ان کا کرتا بھوکتا نہیں ہوں، ایسے ماننے کی طاقت تو ہمارے دماغ میں ہے، لیکن وہ متھیاتو کے ادے سے ایسا ہو نہیں پاتا ہے. متھیاتو کے ادے سے میں نے کوئی کرم ہے اور وہ ڈنڈا مار کے ہمیں نہیں کرنے دیتا، ایسا نہیں ہے. اپنے آتما میں جو متھیا مانتا روپی بھاو ہے نا، اسی کا نام ہے متھیاتو کا ادے. اسے بھاوودے بھی بولتے ہیں ادھیاتم میں. جب بھی یہ بات آتی ہے تو اسی کو لیتے ہیں. اوپر ایک واقعہ لکھا تھا کہ ادے کی بلوتا سے پرنمتا ہے. یہ اس لیے لکھا تھا کہ یعنی وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ میرے کو ہوئے، تو کرتا کیوں ہے؟ تو کہا کوئی اسے زبردستی کراتا ہے. چھاتی میں بندوق رکھ لیو کا ایسا کر. بولیے کیوں؟ ڈاکو آ جائے اور اس کے بچے کو اڑا کے لے جائے تو چھاتی کی تو بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ اسے عشق ہے کیا کہ ان ڈاکوؤں کو 10 لاکھ روپیہ میرا باپ دے جائے؟ تو ادے کی بلوتا شبد کا پریوگ آیا ہے. اب یہ کہتے ہیں اس کا کیا آشے ہے؟ کیا کرم اسے زبردستی راگادی روپ پرنماتا ہے؟ میں نے بلوتا شبد کا پریوگ کیا نا، جیسے چھاتی پہ بندوق رکھ کے کام کرایا ہے کسی نے کیا. اور بدیش جی کے پرچنوں کو سنو گے یا پڑھو گے تو اس میں بار بار یہ آئے گا کرم نے کچھ نہیں کیا. کرم بتارے کون بھول تیری ادھکائی، اگنی سہے گھن گھات لوہے کی سنگتی پائی. تو کہتے کیا راگا جنو پرنماتا ہے؟ تو اتر اس پرشن کا اتر جےپور سے پرکاشت سمے سار کی ٹپنی میں اس پرکار دیا گیا ہے. کیا نیچے ٹپنی دی ہے؟ وہ دھیان دی ہے کہ سمے وشتی جی کی روچی سروتھا شدھاتم درب کے پرتی ہی ہوتی ہے. اب یہ روچی شبد میں بھی اپن کو بہت چکر ہے. روچی تو اپن کہتے ہیں نا، کھانے کی روچی ہے، پینے کی روچی ہے، ہم کو اس بات کی روچی ہے بولتے ہیں نا. تو ہم تو لوک میں تو روچی شبد اس میں پریوگ کرتے ہیں، ایک طرح سے تیور اچھا کے ارتھ میں. اور شاستروں میں روچی شبد کا پریوگ شردھا ڈھون کی پریائے کے ارتھ میں کیا ہے، چھڑا لال نے کیا نا. پر دربیہ شردھا ہوگی، شردھا ان کا پرنمن. تو شردھا ان کا پرنمن تو صرف دو روپ ہی ہوتا ہے، کیا؟ کہ اے میں ہوں یا اے میں نہیں ہوں. میں اس کا کرتا ہوں کہ میں اس کا کرتا نہیں ہوں، میں اس کا سوامی ہوں کہ میں اس کا سوامی نہیں ہوں، میں اس کا بھوکتا ہوں کہ میں اس کا بھوکتا نہیں ہوں. بس اتنا جاننا بھی جان کے کھاتے میں ہے کہ وہ ڈسیزن کرے دو، تو کون میں ہوں اور کون میں نہیں ہوں. بس اسے زیادہ لمبا توڑا بھاشن نہیں چاہیے شردھا کو. شردھا کہتے تو جتنے ترک بترک کرنے ہو نا، جتنے آدم دیکھنا، جتنے ودوانوں کو سننا ہو، جان سے تم کرو. और हमें डिस्टर्ब मत करो तब तक, हमें तो तुम अपना डिसीजन बताओ कि तुमने क्या निर्णय किया है, कि ये मैं हूं, ये रूमाल मैं हूं कि नहीं हूं, बस इतना बोला। ये मैं इंसान मैं नहीं हूं क्योंकि ये पुतगल का बना, ये क्योंकि नहीं सुनना हमको, ये क्योंकि सब ज्ञान को बोलो। क्या क्योंकि हमको नहीं जानना है, हमको तो सिर्फ ये बताओ कि ज्ञान ने जो तुम्हें निर्णय दिया है तो तुमने उसे स्वीकार किया है, तो क्या निर्णय दिया है, कि ये आप हो कि नहीं हो। तो पद्रव के बारे में ये निर्णय दिया हो कि ये मैं नहीं हूं, बस खत्म, सही। और अपने बारे में ये निर्णय दिया हो कि ये मैं हूं, तो बस खत्म। यदि किसी पर के बारे में ज्ञान ने ये डिसीजन ले लिया कि ये मैं हूं, और उस डिसीजन को श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया, तो उसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। अब ये जितना सारा वर्णन होता है सात तत्व रूप, अपनी तरफ से ज्ञान बोलता है। जैसे कि अदालत में वकील क्लाइंट की तरफ से बोलता है ना? यद्यपि वो ऐसा कहता है कि मेरे क्लाइंट को ये स्वीकार नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसा भी कहे कि मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसका अर्थ ही है कि उसकी तरफ से बोल रहा है। और मजिस्ट्रेट भी ये मानता है कि जो इस बहस था वर्णन श्रद्धा का होता है, लेकिन ज्ञान की थे वो, उसमें ये विकल्प चलते हैं। क्या वो विकल्प काम करे, लेकिन श्रद्धा का डिसीजन तो एक ही होता है कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। और सही जगह हुआ तो सम्यक दर्शन, और सही जगह नहीं हुआ तो मिथ्या दर्शन, एक ही बात है। क्या उसका ये नेचर है कि किसी ना किसी में अहम बुद्धि धारण करे ही नहीं, वो ये नहीं सुन सकता कि हमने सब ऐसे देख लिया कि इनमें से कोई तुम नहीं हो, कि मुझे ये नहीं सुनना है, मैं कौन ये बताऊं, कभी उसका पता नहीं चला है। क्या तो वो क्या करेगा कि जब आज तक जिसको उसने अपना मान रखा है वो उसी में स्थिर रहेगी, उसने कुछ नहीं सुना तुम्हारा, तुम ये बताओ कि मैं कौन हूं, ये मैं नहीं हूं, ये तो ठीक हो गया। क्या तो आज तक उसने मतलब देह में अपनापन स्थापित कर रखा है, तो वो तुम ताज ना कहोगे राज भी मैं नहीं हूं, केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं, कितने ही कहो, लेकिन वो जब तक मैं कौन हूं ये नहीं बताया जाएगा उसे, तब तक वो आज तक जिसने अपनापन स्थापित किए रखा है उसमें ये रखेगा, उसमें दो पार मतलब अपनापन है कि उसके अलावा किसी में भी, यानी ये तो नक्की हो गया कि प्रकाली धूप में हूं। अब इन लोग इन बारे में जरा विचार चल रहा है कि इनमें कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं, तो इस फैसले को ये नहीं मानता है। तुम तो मेरे पास पक्का निर्णय कर लो तब आना। क्या श्रद्धा का काम ये है रक्षकों, तो वो ये कहते हैं कि क्या दिया उसने, देखो सम्यक दृष्टि की रुचि माने वही श्रद्धा, सर्वदा शुद्धात्म द्रव्य के प्रति ही होती है। एक और समझ लेना, किसी परद्रव्य को भी वो अपना मानेगी, और ये बहुत समझना कठिन नहीं है। एक सती है, अब वो पति में ही उसका पतिपना है, अब मान लो शास्त्र का उदाहरण देता हूं, तारा का नाम सुना है, सुग्रीव की पत्नी तारा, पद्म पुराण पढ़ा हो तो, सुग्रीव की पत्नी तारा, और वो सती थी तो बाली उसे बहुत चाहता था, उसका जेल खाने, लेकिन वो किसी कीमत पर उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। एक विद्याधर का के बारे में आता है, एक विद्याधर था, वो उसे प्रमुग्ध हो गया, तो उसने क्या किया कि बिल्कुल सुग्रीव जैसा रूप बनाया और वो तारा के पास गया। अभी तारा सुग्रीव आया है मेरा पति, तो उसे वो पूरी तरह से पति के रूप में ही मानती ना, व्यवहार करती क्या नहीं करती, लेकिन दुर्भाग्य से असली पति भी आ गया और दो सुग्रीव हो गए। अब ये बहुत प्रॉब्लम है कि दोनों सुग्रीव में से उसे डिसीजन नहीं है कि कौन असली सुग्रीव है, तो वो क्या करे। उसमें चार बातें हो सकती हैं, सुनना जरा सोचना, कौन सी या इसको माने, दो हो गए, तीसरा कहे कि अब दोनों ही हैं तो दोनों ही को मान लेती हूं, क्या करूं, और तीसरा कहे दोनों को ही नहीं माने, तो चार विकल्प हो गए ना, किसको माने, किसको माने अपना पति, कि दोनों को माने कि दोनों को नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो डिसीजन करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल मन में सोचो कि उसे क्या करना चाहिए। यदि मान लो आपने ये सोची क्या कि यदि मैं किसी को नहीं मानती हूं तो असली पति का भी अपमान हो जाएगा, क्यों, जो भी उसे छूने की कोशिश करेगी तो चांटा जड़ देगी, धक्का मार देगी, वो ऐसा ही व्यवहार करेगी ना जैसे कोई पर पुरुष उसके साथ व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा करने में अपने पति का अपमान होता है, समझे ना, और दोनों के मानने में भी सम्मान तो नहीं होता है, मैंने इसको क्या इसको बांध नहीं सकती है, तो आखिरकार अंत में वो इसी डिसीजन पे पहुंचती है ना कि जब तक ये निर्णय नहीं हो जाएगा कि असली पति कौन है तब तक किसी को नहीं मानूंगी, लेकिन उनमें से बिना निर्णय के किसी को स्वीकार नहीं कर सकती है ना? तो इस सिद्धा का ये स्वरूप है, इस सती का स्वरूप है कि जब तक ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि मैं कौन हूं, वो किसी में भी अपनापन स्थापित नहीं कर सकती। अब एक नियम यह है कि किसी में भी अपनापन स्थापित नहीं कर सकती है तो क्या करे वो तारा क्या करे कि अब चूड़ियां फोड़ दे, रंगीन साड़ी पहनना छोड़ दे, क्यों, क्योंकि ये सौभाग्य के चिन्हों को छोड़ना ये पति के मर जाने का सूचक है। अब वो कोई जो सारे सौभाग्य के चिन्हों को भी नहीं छोड़ सकती और किसी को अपना भी नहीं सकती, तो यहां तो ये है, अभी अपने सिद्धागुण में क्या होगा कि वो कहता है कि तथा स्थिति, अदालत कहती है ना आज जो स्थिति है बस तुम वहां उसमें कायम रहो, जब तक नया डिसीजन नहीं हो जाए तब तक यथास्थिति कायम रहेगी, जरा हम दो वो तो कहे नहीं किसी को ही नहीं अपनाएगी, तो कह दे उसकी वो लाभ ये असली लाभ थोड़ी है, क्यों, ऐसी श्रद्धा क्या करेगी, क्यों वो किसी में अपनापन स्थापित किए बिना रह ही नहीं सकती एक सेकंड भी, श्रद्धा गुण का अति पर्याय है और वो किसी में प्रति समय अपनापन स्थापित करे ही करे। ये बात कहां लिखी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76वें पेज पर नीचे से 5वीं लाइन, क्या लिखा है वहां, ये प्रश्न किया कि एक इंद्रिय जीव ने, तुम कहते हो कि शरीर में उसकी एकत्व बुद्धि है ऐसा मिथ्यात उसे है, लेकिन एक इंद्रिय जीव तो कुछ समझता ही नहीं है, तो उसका उसमें एकत्व कैसे हो सकता है शरीर में, तो उनने ये जवाब दिया है वहां, मैं शब्द बोलता हूं, मैं अनादि से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा को देखने में आता नहीं, रूप रस गंध स्पर्श वाला पदार्थ ही देखने में आता है। तो उसको जो है ना निगोदिया जन्म से ज्ञान है, अब उसने उस स्पर्श के माध्यम से सबसे नजदीक पदार्थ कौन है, तो सबसे नजदीक पदार्थ शरीर है, तो उसके स्पर्श में वो ही आया। जो जानने में आया और ऑटोमेटिक अपना अपन स्थापित क्या, इसलिए उसने शरीर में एकत्र बुद्धि हो गई, ये वहां बाकी लिखा है। मैं उसको उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक गाय ने अभी अभी नया नया बछड़ा दिया है, समझे ना, और वो गाय 10 गायों के झुंड में खड़ी थी। अब वो बछड़ा जो नीचे पड़ा है उसे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या अब क्या करें, ऐसे पदार्थ जो वहां हैं कि वो उन्हें खा सकता है, जैसे घास पड़ी है मां के लिए पड़ी थी तो, लेकिन उसे घास को चबाने लायक मुंह में दांत नहीं, अब वो क्या करे बुलवाए। लेकिन इतना ज्ञान उसे है, सुनो, पैदा होते हुए बच्चे को कि मेरे खाने लायक भोजन की व्यवस्था यहीं आसपास में है, क्या है, उसे पक्का पता है, ना हो तो खोजे क्यों। और उसे ये भी पता है कि वो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें इन्फेक्शन हो, बहुत बढ़िया पैकिंग में है, क्या। अब उसे ऐसा भी पता है कि वो जो पैकिंग है वो उसके ज्ञान में पड़ा है, क्यों, तो इतना भी पड़ा है कि ये जो गाय नाम की जो मेरी मां प्राणी है उसकी दो टांगों के बीच में वो जगह है कि जहां वो है, क्या प्रमाण है इस बात का, क्योंकि जब भी वो जाता है मां के पास दूध पीने के लिए तो वो टांगों के बीच में ही मुंह मारता है, इतना पक्का पता नहीं कि अगली टांगे उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है। तो बछड़ा तो तीव्र विरोध करता ही है, लेकिन गाय भी विरोध करती है। गाय क्यों विरोध करती है, वो कहती है तेरे सहयोग की जरूरत नहीं, तू दूर खड़ा रहे तो तू बता, यानी मेरे की जरूरत मुझे सब पता है, पूछ लेगा वो, थोड़ी देर यहां मुंह मारेगा तो नहीं मिलेगा तो यहां वहां भटक भटकू के पीछे जाएगा तो सही स्थान पर पहुंच जाएगा, वो मां का दूध पीएगा। तो गाय को भी इतना पता है इसलिए दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करने देती और बछड़ा भी नहीं करने देता। अब एक प्रॉब्लम है जो आपको सुलझानी है, सोचना कि वो 10 गायें खड़ी हैं, वो बछड़ा अपनी मां को पहचानता नहीं है क्योंकि आज तक उसने अपनी मां को देखा नहीं, मां के पेट में था लेकिन शक्ल नहीं देखी थी, वो पहचान नहीं सकता है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया है उसे, क्यों, क्योंकि वो जाकर किसी आदमी के पास, ऊंट के पास, हाथी के पास नहीं जाता, वो जो खोजता है अपना भोजन वो उसी गाय नामक प्राणियों में ही खोजता है। फिर भी इतने ज्ञान से आप समझते बिल्कुल अबोध है, बिल्कुल अबोध है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, फिर मतलब की बात कितनी जानता है, देखो सोचा आपने कभी कि कितना जानता है वो। अब ये समस्या है कि सुनना है तो कोई सूत्र आपके पास हो कि आप बता देंगे कि नहीं ना आपके नहीं सुनना है, आपका सहयोग नहीं चाहिए, क्या सहयोग का तो मां भी विरोध करती है और बेटा भी विरोध करता है, तो कहते उसमें क्या है, वो खोज लेता है ना, इसमें कि इतना उसके शरीर में इतना गंदा पदार्थ लिपता है, तब भगा देती है, समझे ना। वो उसको बिल्कुल भी अपनाती नहीं है। आज की भाषा में कहते घास नहीं डालती है, क्यों? तो उन्हीं गायों में से एक गाय आकर उसे चाटने लगती। दो एक मोह जो है सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं अपन, कोई अवर्ज पदार्थ हो ना तो जो आप नहीं खाते हो तो वो आपके हाथ में छू जाए तो आपको इतना वो नहीं होता है। आलू आपके हाथ में छू जाए तो आपको तकलीफ होती है, क्यों? नहाते हो, लेकिन मुंह में छू जाए तो नहीं। आप समझे ना, यानी मुंह को हमने इतना पवित्र मान रखा है कि नहीं है, ये बाद में बात करेंगे कि उसमें कोई भी चीज अपवित्र पदार्थ का स्पर्श हम पसंद नहीं करते, है ना। हमारा धर्म बिगड़ता है ना, कि दवाई हम मुंह से नहीं खा सकते हैं तो इंजेक्शन लगवा लो भी कि हाँ इंजेक्शन लगवा लेंगे, क्यों? वो उसी शरीर में वही दवाई जाएगी ना, लेकिन मुंह से तो नहीं जाएगी ना, क्यों? सारा धर्म तो मुंह में है। यदि उसमें हिंसा है तो वो उस दवाई के बनने में तो हिंसा हो ही गई ना, क्यों? है ना, अभी अपना धर्म सारा मुंह में समाया हुआ है। मुंह को अपन बहुत बचा के रखते हैं और गाय के हाथों से तो वो सफाई कर नहीं सकती है, तो वो जवान बच्चे की एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ है। ये माँ शब्द नहीं जानता है वो, लेकिन जिसे मैं खोज रहा हूं वो ए ही है, क्यों? और जो उसे चाटती है वो उसी के पैरों के बीच में मुंह मारने की कोशिश करता है। देखो कितना समझदार है ये, जिम जिम बड़ा होता है ना ये समझदारी कम होती जाती है। और सारे डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे पहले भोजन के रूप में उसकी माँ का जो दूध उसे प्राप्त होता है वो एक दिन काम नहीं आता है, सारी जिंदगी उसके लिए काम आता है। मैंने वो ऐसी ताकत प्रदान करता है कि सारी जिंदगी उसको काम आती है। जैसे वो बछड़े में कुमें इतनी ताकत है ना कि किसी को अपनी माँ माने ही माने, क्या इतना ज्ञान तो उसे है, क्या कि कोई ना कोई मेरा यहां है और उसके स्तनों में मेरे दूध की व्यवस्था है भोजन की। ना वो दूध शब्द जानता है, ना वो स्तन शब्द जानता है, ना वो माँ शब्द जानता है। देखो बिना शब्दों के कितना ज्ञान है, कितना सच्चा और कितना गहरा ज्ञान है। शब्द एक नहीं जानता, बोल भी नहीं सकता और ये गायों में तो अपने को देखने का मौका मिलता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन हम हो सकते हैं थोड़ा बहुत हम सहयोग करें, लेकिन जंगल में कितने पशु हैं, उन सबकी जनन प्रक्रिया और बच्चों को जो भोजन की प्रक्रिया एक ही तरीके है ना। सभी जो स्तनधारी प्राणी हैं सभी में एक सी है ना, जिनसे पालतू जानवर नहीं है उनमें भी तो यही प्रक्रिया ज्ञान गुण है कि वो सब जाने, और जानकर उसमें एक श्रद्धा गुण है जो उसमें अपने पराये का अपने में स्थापित हो पर को नहीं जाने, और एक काम उसने ज्ञान को सौंपा है। तो ज्ञान बराबर दो काम करता रहता है, क्या क्या, ये अपना है ये अपना नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, करता कि नहीं करता, ये खाने लायक है ये खाने लायक नहीं। तो भक्त शब्द का बेटा कि मैं शाकाहारी हूं ऐसा नहीं जानती हो, लेकिन क्या भक्त है और क्या अभक्त है उसका उसे पता है कि नहीं है, बोलिए, कितना विवेक तो है ना। ऐसे नहीं हो, मैं भी है जो चीनी थी है ना, वो मैं मुस्लिम नहीं बोल रहा हूं, चिड़िया की नहीं बोल रहा हूं, चिड़िया तो सैनी पंच इंद्री है, लेकिन चीनी तो तीन इंद्री है ना, शक्कर के दाने को उठा ले जाती है, वहां पत्थरों को कंकड़ों को पड़े रहने देती है। तो क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, यदि इसका विवेक हमारी इस मनुष्य पर्याय में हमें नहीं हुआ तो हम चीटी से भी ज्यादा गए बीते हैं ऐसा समझ लेना, क्योंकि उसे अपने खाद्य अखाद्य का विवेक है। तो इस श्रद्धा गुण को ऐसा कोई नहीं जानता है, सत्ता सिद्धानंद सम्मेलन दर्शन होता सात तत्व की श्रद्धा पर ये वो लंबा लंबा देव साधनों की श्रद्धा इतनी इतनी श्रद्धाएं घुसर जाती हैं, तो वो कहते हैं असली श्रद्धा त्रिकाली देव भगवान आत्मा मैं हूं उसका दूर दूर तक ही पता नहीं चलता है। हैं? अभी पूरी एक किताब लिखने सम्मेलन दर्शन पर, लेकिन ये त्रिकाली देव भगवान आत्मा ये मैं हूं ऐसा उसका नाम सम्मेलन दर्शन एक अक्षर ही नहीं आएगा, तत्व सूत्र आएगा, रत्न का तार आएगा, तो और शास्त्र आएंगे धवल आ जाएगा महाधर्म होगा उनको पता नहीं क्या करें, कभी कभी आश्चर्य होता है ना। पंचतंत्र में ऐसी बहुत मजाक उड़ाई थी, पंचतंत्र किताब पढ़ी किसी ने, आजकल तो कोर्स में नहीं है ना, उसमें एक उदाहरण दिया है कि एक हिरण है और एक विद्वान है संगीत शास्त्र का, तो उसने क्या लिखा है तो संगीत शास्त्र के विद्वान से पूछते हैं क्या? और उसमें इतनी मात्राएं होती हैं इतना ये होता है सब उसने संगीत स्वर में जितनी बातें होती हैं उसमें लिख दी। फिर उसने कहा कि कोई आदमी एक छंद बोल के सुनाए और कहे कि बोलो ये कौन सा छंद है, छंद शास्त्र का विशेषज्ञ वो बता देगा जैसे आप आदि प्रतिमा इसमें 12 मात्रा हूं इसमें 18 मात्रा हूं, ये मात्र छंद है अक्षर का छंद है इसमें 32-32 रंग होते हैं, एक पद में 8-8 होते हैं अंतिम वाले में 7 होते हैं, ऐसे 31 सवैया होता है 23 सवैया होता है, क्यों सब बता दे लेकिन सामने वाला पढ़ के बताए गाय तो नहीं बता सकता जो सवैया है जो मनन का व्यक्त है कि कौन सा छंद है बता नहीं सकता। और उन्होंने कहा वो हिरण वो संगीत के कुछ नहीं बता सकता एक शब्द भी, लेकिन जब वो संगीत के गाता है तो उसको इतना मुग्ध हो जाता है उसका उसे इतना ज्ञान है कि उसमें कोई उसे शिकार कर ले तो भी वो उसकी तरफ देखता नहीं, आप उसने मन में वो हिरण जानता है, ऐसा उदाहरण टूडमन जी ने दिया है। ऐसे ही हम संबंध हैं कि लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, तुम तो आत्मा पे कहो हम तो आत्मा का लंबा लंबा सुन गिना सकते हैं। आत्मा तीन प्रकार के होते हैं, एक बहिरात्मा एक परमात्मा एक अंतरात्मा, तो बहिरात्मा किसे कहते हैं अंतरात्मा परमात्मा, लेकिन आत्मा किसे कहते हैं, ये तीनों आत्मा ही तो हैं, ये तो आत्मा के भेद है ना, क्या बोलो पाप किसे कहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत पसीना छूट जाता है, हिंसा झूठ चोरी किसी परिवार को पाप कहते हैं और हिंसा उसे कहते हैं झूठ सब बता दो। जब हमने वो बालभूत पारों वाला भाग दो लिखना शुरू की कोई जगह बताओ कोई निकालो कौन से शास्त्र में लिखा है पाप किसे कहते हैं, गांधी जी दौड़ाओ दिमाग जितने आपने शास्त्र पढ़े हैं, आखिरकार कहीं नहीं मिला तो आखिरकार ये है कि भाई बुरे काम को पाप कहते हैं, ये कोई परिभाषा थोड़ी हुई, लेकिन करें क्या बताओ इसने तो शास्त्र तो कोई बोलते ही नहीं कुछ क्या करें। भैयागण के पास गए पापी थी आत्मानमिति पापम, जो आत्मा को गिराए उसे पाप कहते हैं, अब क्या गिराए कैसा गिराए आत्मा क्या किसको गिराना कैसे गिराना क्यों, तो सब पाप करते हैं सब पापों के भेद गिना सकते हैं पापों पर लंबा व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन पाप क्या है उनमें कथाएं चार होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा बहुत है, संस्कृत आदि हमें बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे बहुत दिनों तक, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने अपने ग्रंथ का नाम रखा था कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि गलत है मिस्टर भारल, क्यों? कि कृति शब्द पर स्वयं भाववाचक है, उसमें त्व प्रत्यय लग ही नहीं सकता। तो अब समझ आ रहा है क्या कृति? तो कृतित्व तो कैसे हो सकता है? कृति तो सार करके दिया है पंडित टोडरमल व्यक्तित्व तो और कर्तित्व। अब यहां एक पंडित थे पंडित कस्तूरचंद जी काशी भाई, तो वे भी बहुत अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, चंदूदास जी के शिष्य थे। तो वे कृतित्व तो ही लिखते थे, उन्होंने जो किताब में लिखी थी कृतित्व तो ही कृतित्व। अब वो कृतित्व तो कहें और हमारे वो डॉक्टर साहब कर्तित्व तो कहें, अब नाम में ही झगड़ा पड़ रहा है। तो हमें चंदूदास जी सबसे बड़े विद्वान हैं, तो अपन उनके पास चलो, उनसे पूछेंगे। तो मैं गया तो वो अपने कॉलेज से घर जरा थोड़ा पूछना है बोला ना, तो वहीं खड़े खड़े अभी तले रहने आदमी बीज मार्केट में खड़े और कहें बोलो। तो मैंने उन्हें बताया कि ये झगड़ा है, कस्तूरी जी कहते हैं हमारे डॉक्टर डी के जैन जो ब्राइड हैं वो ये कहते हैं। क्या मैं जो बात सुनाना चाहता हूँ बहुत मरण की है, तो बोले एक कर्तव्य तो सही है ना। तो मैंने कहा कस्तूरी जी से कहा तो वो कहते हम डिक्शनरी में निकाल निकाल के बताते हैं कि डिक्शनरी में कृतित्व तो लिखा है। आप समझे ना? तो उन्हें छूटते ही कहा कि बताता हूं वो बात के सुना कि डिक्शनरी लिखने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं? क्या आप समझ, डिक्शनरी लिखने वाले शब्दों का कितना अधिक ज्ञान इसको होगा जो पूरी डिक्शनरी लिख दे। कि डिक्शनरी लिखने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं? और उनने भी ये कहा कि कृति शब्द स्वयं भाववाची है, उसमें तो प्रत्यय लग ही नहीं सकता, और उन्हीं के सिर से जिंदगी भर लगाते रहे, उनकी नहीं सुनी। बोलो क्या करे, अब कर्तृत्व तो कैसे हो सकता है? तो प्रत्यय तो कर्ता तो कर्तृ कर्ति ये शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा तो भाववाची है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कार्य उनका, लेकिन कहां कौन है, किसको पता है कितने लोग हैं? एक धारा चल पड़ती है, चलती रहती है। अब क्या कितने लोगों को समझाओ? जितने लोगों ने हमको बताया उन लोगों को पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। तो भैया हमने तो इस तरह से देख देख करके करके निर्णय करके लिखा है, समझिए ना कितना फर्क पड़ता है। ये बेटा मुझे रो ही नहीं सकता है, लेकिन गुजरात में वो समझा के तुम परेशान हो जाओ, ये मानेंगे ये कौन श्रीमद के जितने भगत हैं, ये सब कृपालु दे। और उसी वजह से बोझों को भी कृपा भी कहने लग गए। मैंने बहुत से मनुष्यों को बहुत समझाने की कोशिश की क्या, लेकिन वो गुरुदेव ने कहीं लिखा होता तो एक सेकंड में मान लेते हैं क्या। अब वो तो भैया ग्रहण से क्यों नहीं लिख सकता, तो व्याकरण चालों से पूछो क्यों नहीं लिख सकता। आप भैया ग्रहण ने जो नियम बताया है व्याकरण का है, आप समझे ना वो उनसे पूछो, लेकिन व्याकरण का ये नियम नहीं है ये बताओ। व्याकरण में ये नियम है, हमने तो लक्ष्मीकांत कौमली पढ़ी थी 10 साल की उम्र में, तब से हमने क्या तुम लोग 16 वर्ष की उम्र के बाद पढ़ते हो करके आते हो, नहीं थे तब हमने लक्ष्मीकांत कौमली पढ़ी थी। चलो उन्हीं बलवत्ता चल गई ना, सम्यक दृष्टि की रुचि सर्वथा शुद्धात्म द्रव के प्रति ही होती है, उसको कभी आदि भावों की रुचि नहीं होती, माने अपनापन नहीं होता उसमें। आप समझे ना, उस शुद्धात्म द्रव्य में ही अपनापन होता है। रुचि का अर्थ कर रहा हूं मैं आपको, इतनी जो देर तक आपने इतनी मेहनत करी है और इसके लिए इतनी मेहनत लंबी कड़ी रामायण सुनाई है, उसको तो राजद्वेष आदि भाव होते हैं, उसको जो राजद्वेष आदि भाव एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं। तो कर्म की बलवत्ता को ऊपर क्या प्रश्न था, उदय की बलवत्ता, है ना, फिर भी बेरुचि पूर्वक नहीं होते। अब हम कहें इच्छा उनकी उनको पूरी हो, बिना इच्छा के नहीं होते। अरे इच्छा के नहीं होते क्या है? उसका इच्छा ही का नाम दे रहे हैं। राग द्वेष नहीं होते लिखते कैसे हो सकता भैया? वो समझना, बिना इच्छा के होते होंगे, बिना इच्छा के तो कैसे हो सकते हैं? अभी उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है जरा बहुत अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन दूसरा बोलता हूं जो ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोलता हूं कि आप वो गुस्सा आता है तो गुस्सा आने से शरीर में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं कि जो वो रस छोड़ते हैं और खून में वो रस जाता है तो खून में उत्तेजना आती है। उत्तेजना आती है तो आपके हाथ पैरों में जकड़न मजबूती आ जाती है कि फिर आप किसी से लड़ सको, ऐसा मुक्का मार सको। ऐसे ऐसे इस हाथ में दम नहीं है, ऐसा मुक्का मार दोगे तो हाथ की उंगलियां में दर्द हो जाएगा, टूट जाएगा। मुझे क्रोध आना चाहिए पहले, फिर वो पदार्थ झरना चाहिए, समझिए ना, फिर उसमें वो ताकत आनी चाहिए, तब मारोगे तब होता है। तो ऐसे ही हरेक में, ऐसे ही इस स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, रसन इंद्रिय के विषय में आप लगाना अपना दिमाग। खाने में भी ऐसा नहीं चलता दादा, आपको खाने की पहले इच्छा होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा वो आना चाहिए, फिर मुंह में लार आती है, फिर आप खाओगे तो वो लार में मिलकर आप चबा सकते हो, नहीं रूखे रूखे में आपको नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी इच्छा नहीं हो तो फिर आप मुंह में डाल दी, नहीं 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 मिल सकता। हरेक में एक एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ढंग से खाया जाएगा ढंग से पचेगा, डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं। मैंने बोला लड़ने के पहले जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, तो आप इतने हो सकते हैं पहले से, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते खेलने वाले, क्यों? ये जो शरीर में दो होता है, एक होता है रिलैक्शन, जानते हो, आराम मिलता है रिलैक्शन में, और काम होता है होते हैं, कोई ज्यादा मोटे ताजे नहीं होते, और जब वो ऐसा करके करके ऐसा करके ये करता है तो एकदम उसे डबल मोटे हो जाते हैं, देखना है। तो उसको आधा घंटा पहले ऐसा किए बिना वो नहीं लड़ सकता। आपने देखा होगा जब ये अखाड़े में पहलवान जाते हैं तो पहले से उसका उसकी करने लगते हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं तो पहले से ऐसा 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 उसकी करने लगते हैं, ऐसा नहीं हर काम में, ऐसा अपना बौद्धिक काम में भी है, प्रतिदिन के पहले भी ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपका दिमाग तैयार हो, उसके लिए उसको खून मिले और आपके सभी शरीर पर दिमाग तैयार हो, है ना। आपने देखा शुरू शुरू में आदमी बिल्कुल ऐसा मरा मरा सा लगता है, शब्द भी मरे मरे निकलते हैं, और फिर जो 5 मिनट बाद में एकदम ऐसा लगता है कि एकदम बढ़िया होता है, मारे में नहीं पड़ता है। मेरे से कहते साहब आप पता ही निकलता कि आप भी बीमार हैं, प्रदर्शन करते तो हमें पता ही नहीं चलता है, और प्रदर्शन खत्म हुआ तो फिर सुन गए, फिर रिलैक्शन हो जाए ना, रिलैक्शन है फिर एकदम सुनना पड़ जाएगा मामला। हर चीज में वो रुचि असमय, रुचि और इच्छा, इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब रुचि नहीं है और इच्छा है, विषय सेवन की इच्छा है और रुचि नहीं है, अब इस जगत को नहीं लगता, क्योंकि तो रुचि कोई इच्छा मान रखा, दिक्कत तो ये है ना, वो भेद समझ में आए कैसे नहीं? क्या जब हम कहते तो हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है, कर्म रुचि है ना, तो इच्छा नहीं है, इच्छा के बिना तो होता ही नहीं है। हम सिनेमा देखने चले गए, देखे नहीं माने नहीं बच्चे, इसलिए चले गए, इच्छा तो नहीं थी, अब वो भाषा ही नहीं जानते क्या करें भाई, रुचि तो नहीं थी लेकिन बच्चे नहीं माने तो इच्छा हो गई। तो वो इच्छा क्यों हुई? रुचि से हुई कि बच्चों के आदेश में इच्छा के बिना रुचि के कैसे होता होगा, ऐसा लगता ना कि बिना रुचि के कैसे होता होगा, क्यों हम समझते हैं इच्छा को, और इच्छा के बिना हमें कार्य होता हुआ दिखाई देता नहीं, इच्छा के बिना कार्य होता दिखाई देता नहीं है, ख्याल में आए ना, इसलिए हम गड़बड़ करते हैं। देखो एवं ये भाव बहुत मार्ग में, बेभाव यद्यपि उसकी स्वयं निर्बलता से ही उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं, फिर भी बेरुचि पूर्वक नहीं होते। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक बिना इच्छा के लड़ते रहेंगे, क्यों? और जो 96,000 शादियां होती हैं उन 60,000 वर्षों में होती हैं, पहले नहीं होती थी, 10-20 लड़कियां होंगी, लेकिन ये पूरी गिनती बनती है 96,000 की, वो तो चक्रवर्ती की होती है। तो चक्र अपना प्रकट होता है ना, उसके बाद वे शादियां होती हैं। राजा जो जीतते हैं उस राजा की लड़की से शादी कर लेते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना उनके अंदर में, तो उनमें जो 96,000 में 32,000 लड़कियां तो मिलेच्छ राजाओं की होती हैं। आप सुन लो, अब मैं कोई आज की भाषा का कोई शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, नहीं तो फिर कानून मेरे पर लागू हो जाएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। आया मिले छाचे, तो मिले घर से पूछ नहीं जा सकते। तो वो शादियां तो राजनीतिक शादियां हैं, क्यों? कि जिसको जो हम जमाई बन जाएंगे फिर वो हमें धोखा नहीं देगा, और जिससे हम संपत्ति की सीनी है वो कभी भी धोखा दे देगा। तो उसके बाद में होती है, तो इतना ये करते रहे हम बिना इच्छा से, कोई मानेगा? बिना रुचि के बात तो रुचि की, दीक्षा रुचि का भेद नहीं समझेगा। रुचि नहीं थी, रुचि देव मानती थी। 64वीं 64वीं गाता है ना, सुबे पति नर पति असुर पति इंडिया दाहे से पीड़ित रहे सह सके ना रमणी के विषयों में रमे। वे नहीं जानते होंगे ये बात, ऐसी श्रद्धा नहीं होगी उनकी। ठीक, फिर भी रुचि अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है। इस कारण उन भावों को कर्म की बलवत्ता से होने वाले भाव कहने में आता है। रुचि पूर्वक नहीं थी इसलिए स्वयं की इच्छा से हुए, फिर भी कर्म कर हमने उन्हें डाला। इससे ऐसा नहीं समझना कि जड़ द्रव्य कर्म आत्मा के ऊपर लेश मात्र भी जोर कर सकता है। उसने जोर वो नहीं किया, वो अपने ही अपन ने जोर किया और उसके माथे मरा है ना। देखो जब कोई दो लड़का लड़की मिलके भाग जाते हैं ना, तो लड़का वाला क्या कहता है कि क्या कहने, हमारा लड़का तो बहुत सीधा सच्चा था, वो लड़की उड़ा के ले गई। वो लड़की वाले कहते हैं हमारी लड़की तो गाय थी क्या, लेकिन वो लड़का उड़ा के ले गया। और वास्तव में स्थिति क्या है, फिर दोनों ही बजे गए, गाय भी बच सकती है, कोई किसी को उड़ा के नहीं ले गया। दोनों के भावों में उस टाइप का भाव परिवर्तन हो गया, क्यों? अब वो दोनों ही मिलके भगे हैं, कि खुद गलती करता है अपनी इच्छा के जोर में और उसे कर्म का जोर कहता है, कर्म का जोर कहता है। परंतु ऐसा समझना कि विकारी भाव होने पर भी सम्यक दृष्टि महात्मा की शुद्धात्म द्रव्य रुचि में किंचित भी कमी नहीं है। देखो मात्र चारित्रादि संबंधी निर्बलता है, ऐसा आशय बतलाने के लिए कहा है। जहां जहां कर्म की बलवत्ता, कर्म की जबरदस्ती, कर्म का जोर इत्यादि कथन हो गए, वहां यहाँ क्यों उद्योग की? तो कोई महत्वपूर्ण बात हमने कहीं नहीं छोड़ी, उसे लिखी। हम अपनी भाषा में भी इस बात को लिख सकते थे। अरे भाई सवाल इसका थोड़ी है कि हमने करता, हमने बनाया गया, तब तो पहुंचना चाहिए ना सबके सामने, और प्रमाणिकता के साथ पहुंचना चाहिए, और लोगों को श्रद्धा जो जिससे होती है उस श्रद्धा के साथ पहुंचना चाहिए। तो हो गया समय। तो जब ज्ञानी के रागादि होते हैं, और रागादि तो अज्ञान भाव ही है, फिर ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं होते ऐसा क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर अपन कल पढ़ेंगे।